प्रकृति पुरुष के संयोग का कारण कारिका पुरुषस्य दर्शनार्थ कैवल्यार्थ तथा प्रधानस्य पंगवंध दुभयोरपि संयोगस्तत्कृतः सर्गः। अन्वय पुरुषस्य कैवल्यार्थ तथा प्रधानस्य दर्शनार्थं पंगवंधवत् उभयोः संयोगः सर्गः अपि तत्कृतः भवति। कारिकार्थ पुरुष के द्वारा ही प्रधान का दर्शन हो सकने के लिए तथा प्रधान के द्वारा ही पुरुष का कैवल्य हो सकने के लिए दर्शन एवं कैवल्य के इच्छुक प्रकृति पुरुष का संयोग होता है और उसी संयोग से सृष्टि भी होती है। भाष्यम अथैतयोः प्रधान पुरुषयोः किम हेतु संघातः उच्यते पुरुषस्य प्रधानेन सह संयोगो दर्शनार्थम प्रकृति महदादि कार्य भूत पर्यंतम पुरुषः पश्यति प्रधानस्यापि पुरुषेण सह संयोगः कैवल्यार्थम स च एतदर्थ संयोगः पंगवंध दुभयोरपि दृष्टव्यः यथा एकः पंगुरेकश्चांधः एतौ द्वावपि गच्छन्तौ महता सामर्थ्ये नाट्यव्यं सार्थस्य स्तेन कृतादुपप्लवात् स्वबंधु परित्यक्तौ देवादित श्चेतश्च चेरतुः स्वगत्या च तौ संयोगमुपयातौ पुनस्तयो स्ववचसो विश्वस्तत्वेन संयोगो गमनार्थं दर्शनार्थं च भवति। अंधेन पंगुः स्कंधमारोपितः एवं शरीरारूढ पंगु दर्शितेन मार्गेणांधोः याति षड्गुश्चांधस्कंधारूढः एवं पुरुषे दर्शन शक्तिरस्ति पंगुवत् न क्रिया प्रधाने क्रिया शक्तिरस्त्यंधवत् न दर्शन शक्तिः यथा वानयोः पंगवंधयोः कृतार्थ विभागो भविष्यति सितस्थान प्राप्तयोः एवं प्रधान अपि पुरुषस्य मोक्षं कृत्वा निवर्तते पुरुषो अपि प्रधानं दृष्ट्वा कैवल्यं गच्छति तयोः कृतार्थयो विभागो भविष्यति किञ्चान्यत् तत्कृतः सर्गः तेन संयोगेन कृतस्तत्कृतः सर्गः सृष्टिः यथा स्त्री पुरुष संयोगात् सुतोपत्तिस्तथा प्रधान पुरुषं संयोगात् सर्गस्योत्पत्तिः। गौणपाद भाष्य का भावार्थ यह निश्चित जानिए कि लघु अथवा बृहत प्रत्येक क्रिया के मूल में कोई न कोई प्रयोजन अवश्य निहित रहता है। फिर सभी क्रियाओं का मूल आधार मूलभूत अर्थात संसार दशा में ही प्राणी क्रियावान होता है। प्रकृति पुरुष का संयोग निष्प्रयोजन कैसे हो सकता है? यहाँ दोनों ही अपने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए परमुखापेक्षी हैं। प्रस्तुत कारिका में ईश्वर कृष्ण अत्यंत सटीक लौकिक उदाहरण द्वारा दोनों के परस्पर सापेक्ष अपने अपने लक्ष्य को ही संयोग के हेतु रूप में उपन्यस्त करते हैं। वस्तुतः सांख्य योग शास्त्र के अनुसार प्रकृति पुरुष के इस संयोग का सर्वमूर्धन्य हेतु अविद्या है। पुरुष का प्रधान के साथ संयोग दर्शन के लिए होता है। पुरुष के द्वारा ही प्रकृति बुद्धि आदि भूत पर्यंत समस्त जड़ पदार्थ देखे जाते हैं। प्रधान का भी पुरुष के साथ संयोग कैवल्य मोक्ष प्राप्ति के लिए होता है। आचार्य गौणपाद की उपर्युक्त पंक्तियों का आशय यह है कि दर्शनार्थ पद का अर्थ अपने प्रकृति में भोग्यत्व सिद्ध करने के लिए है तथा कैवल्यार्थ पद का अर्थ अपने पुरुष को कैवल्य पद पर प्रतिष्ठित करने के लिए है। प्रकृति की भोग्यता पुरुष करती है अर्थात प्रकृति पुरुष कर्तिक दर्शन का विषय बनती है। इस प्रकार भोग्यता का आश्रय बनने की इच्छुक प्रकृति का भोक्ता पुरुष के साथ संपर्क स्थापित करना स्वाभाविक है। पुरुष का केवलत्व प्रकृति कर्तिक है। सांख्य दर्शन की मान्यता के अनुसार प्रकृति तथा तज्जात जड़ पदार्थों से अपने में अत्यंत भेद का अपरोक्ष ज्ञान होने पर ही पुरुष अपने अभीष्ट मोक्ष को सिद्ध कर पाता है। अतः पुरुष प्रकृति के स्वरूप को भली भांति जान सके तदर्थ व भावनात्मक दृष्टि से प्रकृति के समीप आता है। इस प्रकार परस्पर एक दूसरे के उपकारक बनकर वे संयुक्त होते हैं। प्रकृति पुरुष के संयोग का स्वरूप क्या है? यह अत्यंत जटिल प्रश्न है। दार्शनिक जगत की भांति लौकिक जगत में भी परस्पर सहायता की अपेक्षा रहने वाले व्यक्तियों में किस प्रकार मैत्री होती है, इसे दृष्टांत द्वारा स्पष्ट करते हैं। एक समय की बात है कि दो असहाय व्यक्ति, अंधे एवं पंगु, अपने अपने साथियों के साथ कहीं जा रहे थे। इतने में दैववशात चोरों के आक्रमण से भयभीत होकर सभी एक दूसरे को छोड़कर अपनी अपनी प्राण रक्षा के लिए इतस्ततः भागने लगे। साथियों से छूट जाने पर बेचारा अंधा मार्ग टटोलता हुआ इधर उधर भटक रहा था। इतने में उसकी एक पंगु से भेंट हुई। बातचीत करने पर पता चला कि दोनों पर समान विपत्ति आ पड़ी है। उन्होंने आपस में एक दूसरे की सहायता का प्रस्ताव रखा। चूंकि दोनों अकिंचनों को एक दूसरे की आवश्यकता थी, इसलिए प्रस्ताव तुरंत पास हो गया। पंगु चलने में असमर्थ था और अंधा देखने में, अतः समझौता कर पंगु अंधे की पीठ पर सवार हो गया और अंधे को मार्गदर्शन करता रहा। इस प्रकार दोनों अपने अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच पाए। इसी प्रकार पुरुष में दर्शन शक्ति है, लेकिन पंगुवत उसमें क्रिया शक्ति नहीं है, और प्रकृति में क्रिया शक्ति है किंतु अंधवत उसमें दर्शन शक्ति नहीं है। अतः दोनों का मैत्री संबंध कहा गया है। और जिस प्रकार अंधे एवं पंगु अपने अपने निवास स्थान, निर्दिष्ट स्थल पहुंच जाने पर अलग अलग हो जाते हैं, इसी प्रकार प्रकृति भी पुरुष को मोक्ष दिलाकर चरितार्थ हो जाती है और पुरुष भी कैवल्य प्राप्त कर कृतकृत्य हो जाता है। इस प्रकार अपने अपने उद्देश्य की पूर्ति हो जाने पर दोनों का विशिष्ट संयोग समाप्त हो जाता है। प्रकृति पुरुष के संयोग का प्रतिफल सर्ग सृष्टि है। आचार्य गौड़पाद ने इसकी तुलना स्त्री पुरुष संयोग के प्रतिफल संतान से दी है, लेकिन यह अत्यंत सटीक दृष्टांत नहीं है। स्त्री पुरुष का भौतिक संयोग सांख्य शास्त्र के अलौकिक संयोग के समकक्ष नहीं है, यह एक विलक्षण संयोग है। सृष्टि अर्थात सृष्टिगत पदार्थ प्रकृति पुरुष के उद्देश्य की पूर्ति के मुख्य द्वार हैं। इनके बिना भोगापवर्ग की निष्पत्ति नहीं हो सकती। सृष्टि व्यवस्था कारिका प्रकृतिर्महांस्ततो अहंकारस्तस्मात् गणस्य षोडशकः तस्मादपि षोडशकात् पञ्चभ्यः पञ्चभूतानि। अन्वयः प्रकृतेः महान् ततः अहंकार तस्मात् अहंकारात् षोडशकः गणः तस्मात् षोडशकात् अपि पञ्चभ्यः पञ्चभूतानि च आविर्भवन्ति। कारिकार्थ प्रकृति से महान महद्बुद्धि, महान से अहंकार, अहंकार से एकादश इंद्रिय तथा पंच तन मात्रक 16 तत्वों का समूह तथा 16 पदार्थों में से केवल पंच तन मात्राओं द्वारा पंच महाभूतों का आविर्भाव उत्पत्ति अभिव्यक्ति होता है। भाष्यम इदानि सर्ग विभाग दर्शनार्थ माह प्रकृति प्रधानम ब्रह्म अव्यक्तम बहुधानकम मायेति पर्यायाः आलिंगस्य प्रकृते सकाशान महान उत्पद्यते महान बुद्धि आसुरी मति ख्यातिर्ज्ञानमिति प्रज्ञा पर्यायैरुत्पद्यते तस्माच्च महतो अहंकार उत्पद्यते अहंकारो भूतादि वैकृतस्तेजसोभिमान इति पर्यायः तस्माद् गणस्य षोडशकः तस्माद् अहंकारात् षोडशकः षोडश रूपेण गण उत्पद्यते स यथा पंच तन्मात्राणि शब्द तन्मात्रम स्पर्श तन्मात्रम रूप तन्मात्रम रस तन्मात्रम गंध तन्मात्रम इति तन्मात्र सूक्ष्म पर्याय वाच्यानि तत् एकादशेन्द्रियाणि श्रोत्रम त्वक् चक्षु जिह्वा घ्राणमिति पंच बुद्धिन्द्रियाणि वाक् पाणि पाद पायु पस्थानि पंच कर्मेन्द्रियाणि उभयात्मकम् एकादशम् मनस्य एष षोडशको गणो अहंकारुत्पद्यते किंच पञ्चभ्य पञ्चभूतानि तस्मात् षोडशकाद् गणात् पञ्चभ्यस्तन्मात्रेभ्यः सकाशात् पञ्चवय महाभूतान्युत्पद्यन्ते यदुक्तं शब्द तन्मात्रादाकाशं स्पर्श तन्मात्राद्वायुः रूप तन्मात्रा तेजः गंध तन्मात्रा पृथ्वी एवं पञ्चभ्यः परमाणुभ्यः पञ्च महाभूतान्युत्पद्यन्ते। गौड़पाद भाष्य का भावार्थ। गत कारिका में प्रकृति पुरुष के संयोग से सृष्टि बतलाई गई। प्रस्तुत कारिका में सृष्टि पर्यंत वर्ती पदार्थों के आविर्भाव का क्रम तथा उनके विशिष्ट कारणों पर प्रकाश डाला जा रहा है। प्रधान ब्रह्म, अव्यक्त, बहुधानक तथा माया प्रकृति के पर्याय हैं। सर्वप्रथम केवल कारण स्वरूप मूल कारण प्रधान से महत्तत्व की उत्पत्ति होती है। महत्तत्व को बुद्धि, आसुरी, मति, ख्याति तथा प्रज्ञा नाम से पुकारा जाता है। बुद्धि से अहंकार तत्व की उत्पत्ति होती है। भूतादि वैकृत, तेजस तथा अभिमान अहंकार के अन्य नाम हैं। अहंकार से 16 तत्व उत्पन्न होते हैं। ये 2 वर्गों में विभक्त हैं, इंद्रिय वर्ग तथा तन्मात्र वर्ग। इंद्रिय वर्ग के अंतर्गत 11 इंद्रियां हैं। इंद्रियां मुख्यतः 3 प्रकार की हैं, ज्ञान रूप, क्रिया रूप तथा उभय रूप। ज्ञान रूप इंद्रियां श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा तथा घ्राण हैं। क्रिया रूप इंद्रिय वाक, पाणिपाद, पायु तथा उपस्थ हैं। ज्ञान रूप तथा क्रिया रूप अर्थात उभयात्मक इंद्रिय मन है। तन्मात्र वर्ग के अंतर्गत 5 तन्मात्राएं हैं। इनके नाम शब्द तन्मात्र, स्पर्श तन्मात्र, रूप तन्मात्र, रस तन्मात्र तथा गंध तन्मात्र हैं। ऊपरी वर्णित 16 तत्वों में से 5 तन्मात्राएं पंच महाभूत का कारण है। शब्द तन्मात्र से आकाशभूत, स्पर्श तन्मात्र से वायुभूत, रूप तन्मात्र से अग्निभूत, रस तन्मात्र से जलभूत तथा गंध तन्मात्र से पृथ्वीभूत उत्पन्न होता है। उत्तरोत्तर तन्मात्राओं द्वारा स्वस्वभूत की उत्पत्ति होने में पूर्व पूर्व तन्मात्राएं सहायक होती हैं। इस प्रकार सांख्य शास्त्र में जिस पंचीकरणवाद की स्थापना हुई उसे 38वीं कारिका में स्पष्ट किया जाएगा। इस संदर्भ में इतना विशेष ज्ञातव्य है कि 11 इंद्रियों से किसी भी तत्व की उत्पत्ति नहीं है और पंच महाभूत से घटपट आदि अनेक पदार्थ उत्पन्न हुए जो दिखाई भी पड़ते हैं वे भूतों से पृथक नहीं अपितु तद्रूप ही हैं। उनमें भेद प्रतीति भ्रम मूलक है। सृष्टि क्रम में वे ही कारण अपने कार्यों के सहित परिगणित हुए हैं जो तत्वांतर को उत्पन्न करते हैं। जैसे प्रकृति कारण का तत्वांतर कार्य बुद्धि, बुद्धि कारण का तत्वांतर कार्य अहंकार, अहंकार कारण का तत्वांतर कार्य एकादश इंद्रिय तथा पंच तन्मात्र एवं पंच तन्मात्र कारण का तत्वांतर कार्य पंच महाभूत है। इस प्रकार सांख्य शास्त्रीय सृष्टि क्रम सुव्यवस्थित है। बुद्धि का स्वरूप कारिका अध्यवसायो बुद्धिर्धर्मो ज्ञानम विराग ऐश्वर्यम सात्विकमेतद्रूपं तामसं स्माद्विपर्यस्तम् अन्वय। अध्यवसायो बुद्धि एतद्रूपं धर्मो ज्ञानं विराग ऐश्वर्यं सात्विकम् अस्मात् विपर्यस्तम् रूप अधर्मादि तामसं। कारिकार्थ बुद्धि निश्चयात्मिका व्यापारवती है। इसके धर्म, ज्ञान, वैराग्य तथा ऐश्वर्य सात्विक रूप हैं। धर्मादि के विपरीत अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य तथा अनैश्वर्य तामस रूप हैं। भाष यदुक्तम व्यक्ता व्यक्त विज्ञाना मोक्ष इति तत्र महदादि भूतांतम त्रयोविंशति भेदम व्यक्तम व्याख्यातम अव्यक्तम अपि भेदानां परिमाणात् इत्यादिना व्याख्यातम पुरुषो अपि संघात परार्थत्वात् इत्यादिभिर् हेतु भित्वा ख्यातः एवमेतानि पंचविंशति तत्वानि यत्तैस्त्रैलोक्यं व्याप्तं जानाति तस्य भावो अस्तित्वं यथोक्तं पंचविंशति तत्वज्ञो यत्र तत्राश्रमे रतः जटिमुण्डी शिखिवापि मुच्यते नात्र संशयः तानि यथा प्रकृति पुरुषो बुद्धिर अहंकार पंच तन्मात्राणि एकादशेन्द्रियाणि पंच महाभूतानि इति एतानि पंचविंशति तत्वानि तत्रोक्तं प्रकृतेर महानुत्पद्यते तस्य महत किं लक्षणमित्येतदाह अध्यवसायो बुद्धि लक्षणम् अध्यवसानम् अध्यवसायः यथा बीजे भविष्यद् वृत्तिको अहंकारस्तद्वद्यवसायः अयम् घटः अयम् पट इत्येवम् अध्यवस्यति या सा बुद्धिरिति लक्ष्यते सा च बुद्धिरष्टाङ्गिका सात्विक तामस रूप भेदात् तत्र बुद्धे सात्विकं रूपं चतुर्विधं भवति धर्मो ज्ञानं वैराग्यं ऐश्वर्यं चेति तत्र धर्मो नाम दयादानय मनियं लक्षणः तत्र यमानियमाश्च पातञ्जलेभिहिता अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहा यमः शौच संतोष तपः स्वाध्यायेश्वर प्राणिधानानि नियमः ज्ञानं प्रकाशो अवगमो भानमिति पर्यायः तच्च द्विविधं वायम आभ्यंतरं चेति तत्र वायम नाम वेदा शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष मुख्य षडंग संहिताः पुराणानि न्यायमीमांसा धर्मशास्त्राणि चेति आभ्यन्तरं प्रकृतिपुरुषज्ञानम् इयं प्रकृति सत्वरजस्तमसां साम्यावस्थाम् अयं पुरुषः सिद्धो निर्गुणव्यापी चेतन इति तत्र ब्रह्मज्ञानेन पंक्तिर्लोकानुरागः इत्यर्थ आभ्यन्तरेण ज्ञानेन मोक्ष इत्यर्थ वैराग्यम् अपि द्विविधम् बाह्यमाभ्यन्तरं च बाह्यं दृष्टिर्विषये वैतृष्ट्यम् अर्जन रक्षण क्षय संग हिंसा दोष दर्शनाद्विरक्तस्य आभ्यन्तरं प्रधानमप्यत्र स्वप्नेन्द्रजाल सदृशमिति विरक्तस्य मोक्षप्सो यदुत्पद्यते तदाभ्यन्तरं वैराग्यम् ऐश्वर्य ईश्वरभाव तच्चाष्टगुणम् अडिमा महिमा लघिमा प्राप्ति प्रकाम्य मिषित्व वशित्व यत्र कामाव शायित्वं चेति आडुर्भावोडिमा सूक्ष्मो भूत्वा जगति विचरिति महिमा महान भूत्वा विचरिति लघिमा मृणाली तूलावयवादपि लघुतया पुष्पके केसराग्रेष्वपि तिष्ठति प्राप्ति अभिमतं वस्तु यत्र तत्रावस्थितः प्राप्नोति प्रकाम्यं प्रकामतो यदेवेच्छति तदेव विदधति इषित्वं प्रभुतया त्रैलोक्यं पिष्टे वशित्वं सर्ववशी भवति यत्र कामावसायित्वं ब्रह्मदिस्तम्भपर्यन्तं यत्र कामस्तत्रैवास्य स्वेच्छया स्थान आसनविहारानाचरिति चत्वारि एतानि बुद्धे सात्विकानि रूपाणि यदा सत्वेन रजस्तमसि अभिभूते तदा पुमान बुद्धिगुणान् धर्मादिनाप्नोति किञ्चान्यत् तामसं स्माद्विपर्यस्तम् अस्माद्धर्मादेविर्विपरीतं तामसं बुद्धिरूपं तत्र धर्माद्विपरीतो धर्मः एवं ज्ञानं वैराग्यम् अनैश्वर्यमिति एवं सात्विकस्तामसः स्वरूपैराष्टाङ्गा बुद्धिस्त्रिगुण दिव्या तदुपद्यते गौणपाद भाष्य का भावार्थ पीछे सांख्य तत्व पर विचार करते हुए कई बार मोक्ष के साधन व्यक्त अव्यक्त तथा ज्ञ के अपरोक्ष ज्ञान का निर्देश किया गया तथा तत्संबंधित अपेक्षित सूचनाएं भी दी गईं जैसे 10वीं 11वीं तथा 19वीं कारिकाओं द्वारा व्यक्त अव्यक्त तथा ज्ञ के धर्मों पर प्रकाश डाला गया 15वीं कारिका में अव्यक्त तथा 17वीं कारिका से पुरुष की अनुमानतः सिद्धि भी की गई लेकिन सत्व पुरुषान्यता ख्याति के लिए इतनी ही जानकारी पर्याप्त न होने से संप्रति ईश्वर कृष्ण व्यक्त वर्ग के बुद्धि आदि प्रत्येक तत्व का पृथक पृथक स्वरूप विस्तार पूर्वक बतलाने जा रहे हैं। बुद्धि का लक्षण जगत में सर्वप्रथम बुद्धि तत्व का आविर्भाव हुआ इसका आविर्भाव विता प्रकृति है बुद्धि निश्चयात्मक अध्यवसात्मक ज्ञान की जनिका है बुद्धि को निश्चय अथवा निश्चय को बुद्धि कहकर यदि क्रिया क्रियावान में अभेद विवक्षा की जाए तो अपसिद्धांतापत्ति न होगी अध्यवसाय बुद्धि का स्वरूप लक्षण है जिस प्रकार बीज में भविष्याम वृक्ष के पूर्वरूप अंकुर की सत्ता निर्धारित रहती है उसी प्रकार प्रत्येक पदार्थ के विषय में भी यह घट है यह पट है ऐसा निर्धारण रहता है घट में ही घट विषयक निश्चयात्मक ज्ञान जिसे होता है उसे बुद्धि कहते हैं बुद्धि के धर्म त्रिगुणात्मिका प्रकृति से समुत्पन्न बुद्धि भी त्रिगुणात्मिका है बुद्धि के 8 धर्म है 4 धर्म सत्वगुण प्रधान है तथा 4 धर्म तमोगुण प्रधान है रजोगुण दोनों प्रकार के धर्मों का प्रेरक होने से उन्हीं में सन्निविष्ट रहता है धर्म ज्ञान वैराग्य तथा ऐश्वर्य सात्विक धर्म है तथा अधर्म अज्ञान अवैराग्य तथा अनैश्वर्य तामस धर्म है प्रकाश एवं अंधकार की भांति ये धर्म अधर्म ज्ञान अज्ञान वैराग्य अवैराग्य ऐश्वर्य अनैश्वर्य परस्पर विरोधी हैं यह सिद्धांत है कि परस्पर विरोधी पदार्थों का समानाधिकरण्य नहीं होता है अतः यहाँ धर्माधर्म आदि सभी पदार्थ धर्मों का अधिष्ठाता एकमात्र बुद्धि अवश्य है लेकिन कालभेद से कहने का तात्पर्य यह है कि दो समान शक्ति संपन्न व्यक्तियों में ही विरोध देखा जाता है असमान शक्ति वालों में नहीं प्रस्तुत स्थल में दो विरोधी सात्विक एवं तामस धर्म एक ही काल में आविर्भाव को प्राप्त होते हैं, ऐसी बात नहीं है। एक का अभिभव होने पर ही दूसरे का प्रादुर्भाव होता है। अतः उक्त प्रकार से धर्माधर्म आदि विरोधी धर्मों के समानाधिकरण की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। सात्विक रूप आचार्य गौणपाद ने धर्म के अंतर्गत दया, दान, यम, नियमादि को रखा है। सांख्य के समान तंत्र पातंजल योग दर्शन में यम, नियम आदि अष्टांग योग के अंतर्गत यम तथा नियम पांच पांच हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह यम है। शौच, संतोष, तपह, स्वाध्याय तथा ईश्वर प्राणिधान नियम है। ज्ञान को प्रकाश, अवगम तथा भान कहा जाता है। ज्ञान दो प्रकार का होता है, बाह्य विषय ज्ञान तथा आभ्यंतर विषय ज्ञान। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष इन छह अंगों सहित वेद, पुराण तथा न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र आदि दर्शन संबंधी ज्ञान बाह्य विषय ज्ञान के अंतर्गत आता है। प्रकृति पुरुष संबंधी अपरोक्ष ज्ञान आभ्यंतर ज्ञान माना गया है। इसमें प्रकृति पुरुष के स्वरूप की पृथक पृथक रूप से यथार्थ अवगति होना अपेक्षित रहता है। जैसे प्रकृति सत्व रजस तमस की साम्यावस्था है और पुरुष सिद्ध निर्गुण व्यापक तथा चेतन है इत्यादि। बाह्य ज्ञान लोक व्यवहार की व्यवस्था के लिए है तथा आभ्यंतर ज्ञान मोक्ष प्राप्ति के लिए। वैराग्य पद का अर्थ तृष्णा भाव है। सरल शब्दों में विषयों से विमुख होना वैराग्य है। विषय दो प्रकार का है, बाह्य विषय तथा आभ्यंतर विषय। विषय भेद से वैराग्य भी दो प्रकार का है, बाह्य विषयक वैराग्य तथा आभ्यंतर विषयक वैराग्य। सांसारिक विषयों में अर्जन, रक्षण, क्षय, संग तथा हिंसादि दोषों का अवलोकन कर उनसे परांगमुख होने की बौद्धिक चेष्टा बाह्य वैराग्य प्रधान को वैराग्य है। प्रधान को स्वप्न इंद्र जालवत जानकर मुमुक्षुओं में प्रकृति के प्रति जो वैराग्य बुद्धि जागृत होती है उसे आभ्यंतर वैराग्य कहते हैं। बुद्धि का चतुर्थ धर्म ऐश्वर्य है। ईश्वरस्य भावः ऐश्वर्यम्। प्रभुता अर्थात सामर्थ्य विशेष का नाम ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य आठ प्रकार का है, अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम, इषित्व, वशित्व तथा यत्र कामा वसायित्व। ये विशिष्ट शक्तियाँ योगियों में ही दृष्टिगत होती हैं। अणिमा का अर्थ है अड़ुभाव। अणिमा सिद्धि के हस्तामलक होने पर अपने शरीर को परमाणु के सदृश सूक्ष्मतम बनाने की सामर्थ्य उपलब्ध होती है, जिससे अत्यंत सूक्ष्म होकर व्यक्ति जगत में विचरण कर पाता है। महिमा शक्ति से महान महत परिमाण वाला होकर संचरण किया जाता है। लघिमा शक्ति के द्वारा कमल नाल तथा रुई से भी हल्का होकर पुष्पीय परागों के अग्रभाग पर बैठा जाता है। प्राप्ति संज्ञक सामर्थ्य विशेष से किसी भी देश में स्थित पदार्थ का संकल्प करते ही उसे तक्षण प्राप्त किया जाता है। प्रकाम्य का अर्थ इच्छा का अभिघात न हो पाना है। प्रकाम्य शक्ति से इच्छा फलानुसारणी हो जाती है। ईषित शक्ति विशेष से त्रैलोक्य का अधिपतित्व प्राप्त हो जाता है। वशित्व से त्रिलोकवासी वशंगत किए जाते हैं। यत्र कामावसायित्वम का अर्थ ब्रह्मादि से लेकर स्थावर पर्यंत पदार्थों में जहाँ कहीं भी कामनानुसार गति लाभ होना है। उक्त आठ प्रकार का ऐश्वर्य बुद्धि का है। तामस रूप उपरि वर्णित चार सात्विकीय धर्मों से भिन्न चार तामसीय धर्म भी अवसर पाकर अर्थात प्रबल होकर स्वाधीनस्थ बुद्धि का संचालन करते हैं, जिनसे परास्त हुई बुद्धि तदनुसारिणी हो जाती है। धर्म, ज्ञान आदि धर्मों के समय बुद्धि में जिस प्रकार की वृत्तियां स्फुरित होती हैं, अधर्म, अज्ञान आदि काल में उससे भिन्न बुद्धि का वृत्ति व्यापार होता है। प्रकृति से आविर्भूत बुद्धि का यही स्वरूप परिचय है। अहंकार का स्वरूप कारिका। अभिमानो अहंकार तस्माद् विविधः प्रवर्तते सर्गः एकादशकस्य गणस्तन्मात्र पञ्चकस्यैव। अन्वयः अभिमान अहंकार तस्मात् द्विविधः एव सर्गः प्रवर्तते एकादशकस्य गणस्तन्मात्र पञ्चकस्य। कारिकार्थ अहंकार अभिमानात्मक व्यापारवान है, उससे दो ही प्रकार का सर्ग प्रकट होता है। पहला एकादश इंद्रियात्मक सर्ग है, दूसरा पंच तन्मात्रक सर्ग है। भाष्यम एवं बुद्धि लक्षण मुक्तम अहंकार लक्षण मुच्यते एकादश कश्य गणः एकादश इंद्रियाणि तथा तन्मात्रो गणः पंचक पंच लक्षणोपेतः शब्द तन्मात्र स्पर्श तन्मात्र रूप तन्मात्र रस तन्मात्र गंध तन्मात्र लक्षणोपेतः। गौणपाद भाष्य का भावार्थ। प्रस्तुत भाष्य कारिका का अक्षरार्थ मात्र होने से सुस्पष्ट है। इतना विशेष ज्ञातव्य है कि किसी कार्य को करने में अपने को अधिकृत पाना अर्थात मैं समर्थ हूँ या मैं हूँ इस प्रकार की अभिमानात्मक वृत्ति से अहंकार पहचाना जाता है। अतः यही अहंकार का लक्षण है। अहंकार की द्विविध सृष्टि सात्विक एक कारिका सात्विक एकादश कह प्रवर्तते वैकृताद अहंकारात् भूतादेश तन्मात्रः स तामसस्तय जसादुभयम् अन्वयः वैकृतात् अहंकारात् सात्विकः एकादशकः प्रवर्तते भूतादेह तन्मात्रः प्रवर्तते स तामसो तेज सात् उभयम् प्रवर्तते। कारिकार्थ वैकृत अहंकार सत्व गुण प्रधान अहंकार की पारिभाषिक संज्ञा वैकृत से सत्व बहुल 11 इंद्रियों का समूह अभिव्यक्त होता है। भूतादि अहंकार तमोगुण प्रधान अहंकार की पारिभाषिक संज्ञा भूतादि से पंच तन्मात्राओं का समूह प्रकट उत्पन्न होता है जो तमो बहुल है। तेजस अहंकार रजोगुण विशिष्ट अहंकार की पारिभाषिक संज्ञा तेजस से ऊपरी वर्णी दोनों गुणों की अभिव्यक्ति उत्पत्ति होती है। भाष्यम किम लक्षण सर्ग इत्येददाह सत्वेनाभिभूते यदा रजस्तमसी अहंकारे भवतस्तदा सो अहंकारः सात्विकः तस्य च पूर्वाचार्यै संज्ञा कृता वैकृत इति तस्माद् वैकृताद् अहंकारादेकादश इंद्रियगण उत्पद्यते यस्मात् सात्विकानि विशुद्धानिन्द्रियाणि स्वविषय समर्थानि तस्मादुच्यते सात्विक एकादशक इति किंचान्यत् भूतादे स्तन्मात्रः स तामसः तमसाभिभूते सत्वरजसि अहंकारे यदा भवतः तदा सो अहंकारस्तामस उच्यते तस्य पूर्वाचार्य कृता संज्ञा भूतादि तस्मात् भूतादेरहंकारात् तन्मात्रः पंचको गण उत्पद्यते भूतानामादि भूतस्तमो बहुलः तेनोक्तः स तामसः तस्माद् भूतादेह पंच तन्मात्र को गणः किंच तेजसादुभयम् यदा रजसाभिभूते सत्वमसि अहंकारे भवतस्तदा तस्मात् सो अहंकारस्तेजस् इति संज्ञां लभते तस्मात् तेजस् उभय उत्पद्यते उभयमिति एकादशको गणस्त तन्मात्रः पंचक यो अयम् सात्विको अहंकारो वैकृतिको विकृतो भूत्वा एकादशेन्द्रियाण्युत्पादयति स तेजसम् अहंकारम् सहायम् गृहाति सात्विको निष्क्रियः स तेजसयुक्त इन्द्रियोत्पत्तौ समर्थ तथा तामसो अहंकारो भूतादि संगितो निष्क्रियत्वात् तेजसे नाहंकारेण क्रियावता युक्तस्तन्मात्राण्युत्पादयति तेनोक्तम् तेजसादुभयमिति एवं तेजसेनाहंकारेण इंद्रियाणि कादश पंच तन्मात्राणि कृतानि भवन्ति। गौणपाद भाष्य का भावार्थ। अन्य तत्वों की अपेक्षा एकमात्र अहंकार में यह विलक्षणता दिखलाई पड़ती है कि उसके अंश त्रय गुण त्रय समान अनुपात में मिलकर सामूहिक रूप से युगपत सृष्टि व्यापार में संलग्न नहीं होते अपितु अहंकारात्मक सत्वगुण एवं तमोगुण प्रधानीभूत होकर पृथक पृथक अर्थात स्वतंत्र रूप से कार्योत्पत्ति करते हैं। किसी तत्व को स्वतंत्र रूप से उत्पन्न न कर सकने के कारण अकिंचित कर्म रजोगुण अन्य दो गुणों को उनके कार्य व्यापार में प्रवर्तन सामर्थ्य प्रदान करता हुआ ही अपने को कृतकृत्य समझता है। पूर्वाचार्यों ने त्रिगुणात्मक अहंकार के सत्वगुण की प्रचुर अवस्था में तमस की अभिभूत अवस्था में अहंकार को वैकृत संज्ञा से अभिहित किया है तथा तमोगुण की विपुल अवस्था में उसे भूतादि नाम से विशिष्ट किया है। रजोगुण विशिष्ट अहंकार का पारिभाषिक नाम तेजस है। एक शब्द में सात्विक अहंकार वैकृत तामस अहंकार भूतादि तथा राजस अहंकार तेजस है। सांख्य शास्त्र के अनुसार अहंकार के उक्त नामों की सूचना एकमात्र इसी कारिका से मिलती है। वैकृत अहंकार का कार्य एकादश इंद्रियों की सृष्टि करना है तथा भूतादि अहंकार का कार्य पंच तन्मात्राओं का सृजन करना है। इस प्रकार अहंकार की उभयविध सृष्टि में इंद्रियां सात्विक तथा तन्मात्राएं तामस सिद्ध होती हैं। कारिका के तेजसादुभयम अंश को पढ़कर संदेह होता है कि वैकृत तथा भूतादि अहंकार से उत्पन्न तत्व क्या तेजस अहंकार से पुनः सृष्ट होते हैं? उत्तर नकारात्मक है। सात्विक अहंकार निष्क्रिय होता है, वह राजस अहंकार से स्पंदता प्राप्त कर इंद्रियों को उत्पन्न करने में समर्थ होता है। तामस अहंकार की भी यही स्थिति है, जड़ता निष्क्रियता उसका स्वभाव है। क्रियाशील राजस अहंकार से सहायता प्राप्त किए बिना वह तन्मात्र की उत्पत्ति करने में सक्रिय नहीं हो पाता है। इस पद्धति से राजस अहंकार इंद्रिय एवं भूत दोनों का परंपरा कारण है। इसी अभिप्राय से कारिका में तेजसा दुभयम कहा है, अतः सृष्टि संबंधी किसी प्रकार का दोष उपस्थित नहीं होता।